आगे बहुत ही प्यारा रुकू है, जैसे मैंने आपको बताया किरदार साजी, और हम कुरान के बिल्कुल मिडल में इस वक्त खड़े हैं। कई दिन की स्ट्रगल से आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट नहीं भी है ना तो चले स्टोन माउंटेन तो भी है ना। अब आप वहाँ जब खड़े होते हैं ना तो आप क्या कहते हैं, सारा शहर दिख रहा है। आप स्टोन माउंटेन पे जब खड़े होते हैं ना तो लोग कहते हैं जी आपको यहाँ से अटलांटा दिखता है, आप इधर उधर देख। अब वो एक ऊपर से कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, ये बर्ड आई व्यू है कुरान का, ऊपर से देखो पूरे इस्लाम का आपको एक आई बॉल में जो चीज़ दिखे, स्क्रॉल करना ना पड़े, उसको बेस्ट प्रेजेंटेशन कहते हैं ना। तो यहाँ से आप लिखें ये पूरी सूरत आप आगे तक देखेंगे, एक बर्ड आई व्यू है। इसका रब क्या है, शुरू से बनी इसराइल को भी यही अहकामात मिले थे लेकिन उन्होंने नाकदरी की। पहला रुकू जो अल्लाह ने एक्सप्लेन किया उनकी तारीख का, उससे ताल्लुक है, और एंड पे उनके फिर हालात बता के उम्मत मुस्लिमा को अभी से मैसेज दिया जा रहा है कि तुम ठीक हो जाओ, तुम सीधे हो जाओ, तुम्हारे दुश्मनों को हम निपट लेंगे। तुम सीधे होने में देर लगाओगे, हम तुम्हारे दुश्मनों से निपटने में देर लगाएंगे, और तुम सारे काम हम पे डाल दोगे, हम सारे काम तुम्हारे दुश्मनों पर डाल देंगे। टिट फॉर टैट। आइए पढ़िए और इन्जॉय करते हैं आयत 23 से 30। वालिदैन से हुस्ने सलूक, वकदा रब्बुक अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या वबिल वालिदैन एहसाना। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा और किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, तो इनके आगे उफ तक न कहना, न इन्हें टांट डिपट करना, बल्कि इनके साथ अदब और एहतराम से बात करना, और आजजी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ो का बाजू पस्त रखे रखना, और दुआ करते रहना कि मेरे परवरदिगार इन पर वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। आप भी अपने माँ बाप का सोचकर, उस्तादों का सोचकर और ससुराल का, सास ससुर का सोचकर ये दुआ कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हकीकत है कि ये वो मुकाम है कुरान का कि माँ बाप से हुस्ने सलूक होता के कि उनके सामने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका सिखाया। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहम, अपनी जिल्लत के बाजुओं को उनके आगे यूं झुका लो, समेट लो। कभी किसी परिंदे को उड़ने से पहले पर समेटते देखे, कुरान कहते हैं ना सूरत मुल्क में भी आप पढ़ते हैं, कभी वो पर खोलते हैं कभी समेटते हैं। जिनको ऊंचा उड़ना होता है ना वो परों को समेट के अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करके फिर एक जोर लगाते हैं तो ऊपर उड़ते हैं। आपको ज़िंदगी में बुलंदियाँ चाहिए, बुजुर्गियाँ चाहिए, बड़ापन चाहिए, तो क्या करें, अपने माँ बाप, अपने उस्तादों और अपने ससुराल यानी शौहर के माँ बाप के सामने जितने बादब बनते जाएंगे अल्लाह आपको उतना बादब बनाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत काबिल हो जाना कामयाबी की दलील है। मैं आपको सबके सामने गवाही बना के कह सकती हूँ ये गलत है। काबिलियत नहीं होती, पीछे दुआएं होती हैं। माँ बाप की दुआएं लीजिए, उस्तादों की दुआएं लीजिए, आप उनके नज़रों निगाहों में रहते हैं, आप उनके सामने रहते हैं, उन पर एहसान का मामला करते हैं, आपकी कमियों को अल्लाह ऐसे छुपा लेता जैसे मेरी कमियां दूर करके अल्लाह ने यहाँ मुझे बिठाया हुआ। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ मेरे में 0% काबिलियत है। कोई हुई भी तो वो अल्लाह का बंदा होने की नाते कह सकती हूँ, कोई हो भी अल्लाह ने किसी बंदे को बेकार तो पैदा किया नहीं, लेकिन कोई नेकी, कोई अच्छा काम और जो हालात अच्छे मिलते हैं और जो अच्छे लोग मिलते हैं, ये दुआ करने दीजिए, दुआएँ लीजिए, आहें ना लीजिए। हम बहुत बड़े बनने के लिए कहते नहीं, अब हमें अपने उस्तादों की ज़रूरत ही नहीं, हम तो पढ़ाने लग गए हैं ना, आप पढ़ें मैं पढ़ूँ, और फिर क्या होता है, आप वाकई बहुत काबिल बन जाते हैं। जिस दिन जिस बंदे के दिल में ये ख्याल आ जाता है ना कि मैं अपने उस्ताद से ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ, उसी दिन उसका नुकता ज़वाल शुरू हो जाता है, क्योंकि वफ़ा का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। और वो वक्त आपकी कामयाबी है जब आपके उस्ताद आपसे कहें, देखिए डॉक्टर्स कोई भी कह दे ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बीमार बेचारे को तो वो अच्छा ही लगेगा, लेकिन एक दूसरा उससे बड़ा उसका सीनियर डॉक्टर, जिसको सीनियर लेके कहते हैं, वो कहेगा ना कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, फिर उसकी बात मानी जाएगी। मेरी नज़र में आपकी खूबियों के मोहतर 3 लोग हैं, शागिर्द नहीं उस्ताद। शागिर्द गरीबों को क्या पता, अच्छे ही होते हैं, जो कह दो मान जाते हैं, उस्ताद। और दूसरी तरफ आपको सारी दुनिया अवार्ड दे ना, मोरालिटी के सर्टिफिकेट बांटे, लेकिन आपके माँ बाप और आपके शोहर के माँ बाप आपको नाना माने, ठीक है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बंदा मुंह पे नहीं इकरार करता, लेकिन एक वक्त आएगा यूसुफ के भाइयों की तरह वो कहेंगे कि तुमने मेरे बेटे को बहुत अच्छा रखा है, तुम बहुत अच्छी हो, बेटे को कहेंगे तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। और माँ बाप तो वैसे ही, उनकी तो आदत है बच्चियों बच्चों को अच्छा कहना, तो अपने माँ बाप के साथ रहम कीजिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो बातें करके फरमाया, अब कभी कभी क्या होता है कि औलाद चाहती है या बहू चाहती है कि ससुराल की इज्जत करें, देखिए अल्लाह का कुरान सबका है, बूढ़ों का भी है तो जवानों का भी। आप सच्चे हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं माँ बाप को खुश रखने की, वो होते ही नहीं। आप पूरी कोशिश करते हैं हमारे उस्ताद हमसे खुश हो जाए, वो है ही नहीं, खुश होने वाले ही नहीं हैं, उनके खमीर में नहीं है कि अपने शागिर्दों से खुश हों। और ससुराल तो मारूफ हैं, इससे क्या करें। नेक औलादें, अच्छे स्टूडेंट और अच्छी बहुएं बेटियां या दामाद, वो क्या करें, वो आयत नंबर 25 को पढ़ लें, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है, अगर तुम नेक हो तो वो रजू करने वालों को बख्शने वाला। ये है जी फाहा उन बच्चों के दिलों पे जो आके सवाल करते हैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और ख़ास तौर पर जब दीन का फ़र्क पड़ता है, बच्चे दीन सीख लेते हैं, माँ बाप ने नहीं सीखा, फिर वो डांडे पट करते हैं, बेटियों की हिजाब छीनती हैं माँ, लड़कों की बेटों की दाढ़ियाँ कटवाती हैं, रोज़े छुड़वाती हैं, अब क्या करें। अब इस आयत पे है कि अगर तुम अपनी पूरी कोशिश कर चुके अल्लाह की इताअत के अंदर अंदर उनकी बात मानने में, तो खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं करेगा। पहले अल्लाह का हक, फिर माँ बाप का, अब आगे सब जनरल रिलेटिव्स और रिश्तेदारों का और मिस्कीन और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो। और इसराफ और बेजा खर्च से बचो, बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। और अगर तुझे इनसे मुँह फेर लेना पड़े अपने रब की रहमत की जस्तजू में, जिसकी तू उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि उमदगी और नरमी से इन्हें समझा दे, यानी फिर चीख के ना बोल, फटी ना पड़, गुस्से ही ना कर, काम कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो उनको मोहब्बत से इज्जत से बता दो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। रिश्तेदारों को दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, एक वक्त आएगा दे दोगे, लेकिन रब की रहमत की जस्तजू में जिसकी तुम उम्मीद रखते हो तो क्या करो, जिसकी उम्मीद रखता है तू भी, तो तुझे चाहिए कि उमदगी और नरमी से इनको समझा दे। क्या क्या तरीके, कोई और बता सकता? आपको लगता नहीं कि कुरान ऐसे समझाता है जैसे माँ समझाती है, जैसे वाकई आपका कोई बड़ा ही खैर ख्वाह शख्स समझाता है? और इसमें भी आप देखिए कि तबजीर की बात है, रिश्तेदारी, ये सारी तरतीब से बातें आ रही हैं। जब आप अपने रिश्तेदारों का हक नहीं देते तो पैसा बहुत बचा लेते हैं, अब वो जो पैसा बच जाता है ना, तो फिर आप उस पैसे को इसराफ में लगाते हैं। और माफ़ कीजिए कि इस तबजीर में औरतें शामिल, मर्दों की मेहनत की खून पसीने की कमाई हुई दौलत को औरतें जाकर पानी की तरह आग लगाती हैं, बहाती हैं। और फिर इस तबजीर का इजहार देखना तो खुशियों के मौके, और मर्द बेचारे बुद्धू बने हुए हैं। आपने कभी सोचा मर्दों में इतनी बीमारियां क्यों जल्दी आ जाती हैं, ये वक्त से पहले बूढ़े क्यों होने लगते हैं, इनको शुगर क्यों हो गई, इनके ब्लड प्रेशर क्यों हर वक्त हाई रहते हैं, ये हर वक्त चिड़चिड़े क्यों रहते हैं। आप किसी कुर्सी पे किसी भारी वजन वाले को कुछ अरसा बैठने का मौका दें, कुर्सी टेढ़ी हो जाती है, चूँ चूँ करती है, कहते हैं उसकी चूल्हें घिस हिल गई, या आज मर्दों की चूल्हें क्यों हिली हुई हैं, हम औरतों की चढ़ाइयों की वजह से। वो गले में नाहुन देकर कहती हैं कि हमें ये पैसा चाहिए, और ज़रा वो गरीब कुछ बोलने लगे ज़रूरत के, कहते हैं आपको नहीं पता, خاندان کیسے نکلیں. باتیں مجھے سننی پڑتی. وہ بیچارے پھر سیل فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں فون پہ, تو جاؤ بیگم لے لو چیک لے لو, جاؤ پیش کرا لو. جوائنٹ اکاؤنٹ تو میرا تمہارا ہے ہی. واللہ واللہ اس کو سوچیے, مرد نہ رہے شوہر نہ رہے تو کس کو دکھانا اور کس کو بتانا. تو تبذیر سے بچی, اسراف سے بچ رہی, چاہے وہ ایک روپیہ ہو چاہے ایک لاکھ روپیہ ہو. یہ دونوں چیزیں اللہ نے یہاں شیطان کی طرف نسبت کر دی. اور پھر آگے کیا فرمایا, اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ, یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ کہا کہ تبذیر کا سنا ہے تو پتہ چلا کہ ضروریات پہ بھی نہ لگاؤ. شوہر کو بھی پھر اس میں سمجھا دیا گیا کہ بنیادی ضروریات تو پوری کرو, جو بھی اللہ نے بیسک نیڈس رکھی ہیں اس کو پورا کرو. کیا آپ کو پورا فیملی سیٹ اپ نہیں سکھاتا؟ اور الحمدللہ جہاں آج ہم خواتین میں کچھ کمی ہے, وہاں ابھی تک ہماری مشرقی عورت میں, خاص طور پہ ایسٹرن کلچر جس کو ہم جانتے ہیں اپنے انڈو پاک میں, اس عورت میں خیر بہت ہے, مردوں میں بھی بہت خیر ہے. یہ جو فیملی سیٹ اپ ابھی تک چل رہا ہے نا, آپ ایون امریکہ میں آ گئے ہیں, آپ کینیڈا میں ہیں اور ناروے میں, جتنا فیملی سیٹ اپ ان کا, ایک بندہ مرتا ادھر ہے 7-20 بندے جاتے ہیں جہاز میں اس کی ڈیڈ باڈی کو دفن کرنے, کوئی ایک گھر میں آتا ہے 4 لوگوں کا کھانا پکاتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان اور مسلمان عورتیں آج بھی رول ماڈل ہیں پوری دنیا کی عورتوں کے لیے. کیئرنگ کیا کچھ نہیں سہ جاتے. ٹھیک ہے کمزوریاں ہوتی ہیں عورتوں میں بھی مردوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن بینگ آ ہسبینڈ اینڈ وائف اور بینگ آ فیملی ممبر, ایسٹرن کپل از بیسٹ کپل. مرد بھی بہت قربانیاں دیتے ہیں, اللہ وہ پیسے میں دیں یا کئی جگہ اپنے حق چھوڑ دیں, رشتہ داریاں نبھاتے رہتے ہیں. کوئی فیملی کا دور پار کا مہمان آ جائے, وہ پورے ہو سکتے ایک ہفتے کے پیسوں کی جو گروسری آنی تھی وہ اسے ایک پہ لگا دیں. یہ ایک ابھی مربت ہے, ویسٹ میں یہ نہیں دکھتی. اپنا اپنا برگر, اپنی اپنی پلیٹ دے دو, اپنا اپنا سیب خریدو. اسلام کے پاس یہ سیٹ اپ موجود ہے, اور اسلام میں بھی وہی بات ہے کہ ہاسپیٹیلٹی جتنی ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں. تو یہ رکوع آپ کو خوش کرے, اگر آپ ان کو پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کچھ دکھے تو خوش ہو. بس ایک چیز کا محاسبہ کر لیں, یہ سب کرتی کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے, عزت کے لیے, انہوں نے کیا تھا ان کے لیے. اچھا میں بڑی بھابھی ہوں ذرا میں اپنی عزت کرا لوں, اچھا میں نئی نئی آئی ہوں ذرا میں زیادہ ساتھ کی خدمت کر لوں تاکہ دوسروں سے میں آگے نکلوں. یہ نہیں ٹھیک. جو کریے اللہ خیر کرے, کہ کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے اور آپ اس کام کو کرتے ہی رہیں تو آپ مخلص ہیں ماشاء اللہ. لوگوں کی تعریفوں سے چابی لگ جائے, بھاگ بھاگ کے کریں, آپ کہتے ہیں تعریف پڑی ہوئی نا, آپ موٹیویشن مل گئے, اور جب چابی پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو بیٹھ جائیں گے بیونڈ اینی اپریسیشن. اور تنقید ہوئی, بڑے لوگ بیٹھے مزے سے باتیں چاتیں کر رہے ہیں اور ذرا سی تنقید ہوئی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سیلف کانشیس ہیں. اور خود پسند لوگ دین کے کام نہیں کر سکتے. ایکسٹرا سینسٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں خود پسند ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا, فیتھ ان ایکشن, والدین سے بہترین سلوک کرنا ہے, والدین سے ادب سے بات کرنی ہے, ان کو کسی بات پر ناگواری کا احساس نہیں دلانا, والدین کے حق میں زندگی اور ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرنی ہے, اور مال کے خرچ میں اعتدال سے کام لینا. ہاں پیسہ گننا ہے تو ماں باپ کے لیے گننا, ان پہ کتنا لگ رہا ہے, کتنی دوا کھا لی, کتنے کپڑے پہن لیے, اور وہ اللہ رحم کرے ہٹلر کی طرح سارے بوڑھوں کو مار دو, انہوں نے اب کیا دینا, بیکار ہے دنیا پہ بوجھ مرسی کے لیے. یاد رکھیے کہ ماں باپ جب کچھ اور نہیں دے سکتے نا, تو وہ دعائیں جو دیتے ہیں نا اس کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے, اور یہ اس دن پتہ چلتا ہے جب وہ دعائیں دینے والے نہیں رہتے. آگے رکوع نمبر 4:31-40, بہترین انسان بننے کے رہنما سو. آپ کا سر ذرا خوشی سے اوپر نہیں ہو رہا, کتنی پیاری کتاب میں پڑھ رہی ہوں. کوئی ایک آیت, کوئی ایک عادت بات آپ نے ابھی 14 پاروں میں ایسی سنی کہ اللہ کہہ رہا بگڑو, ذرا خرابیاں کرو, گھروں میں لڑائیاں ڈالو, ذرا میاں کو ٹھیک کر دو نا, اور بیوی کو ذرا مارا کرو, کبھی سنا آپ نے؟ 15 पारे आज हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा, अगले 15 की मैं आपको गवाही देती हूँ। आपको पूरे कुरान में कोई एक मसला, कोई एक बात ऐसे ही नहीं लगेगी कि आप उस पर उंगली रख सकें कि हाय हाय ये तो सुन ना ले, हाय ये गैर मुस्लिम ना सुन ले, हाय ये इस्लाम दुश्मन ना सुन ले। सबको सुनाइए, ओपन चैनल्स पे जाता है। और आज से नहीं जा रहा माशाल्लाह, पिछले 23 साल तो मुझे भी पता है, 23 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये कुरान का पैगाम ओपन चैनल्स पे जाता है। पहली दफ़ा जब गया था पहल टॉक पे, मुझे थोड़ी घबराहट थी, पता ही नहीं होता कौन सुनेगा आपकी बात। फिर अब तो सोशल मीडिया वो हो गया कि हर एक की रेंज में, कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये बात यहाँ नहीं करनी। ठीक है, कभी आपस में जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, बेतकल्लुफी का अंदाज होता है, वो इजी फील होता है, तो ये तो केयर होती है कि यहाँ वालों को तो हंसी आएगी, बाहर वाले कि हम पे ना हंसने लग जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ये कभी नहीं हुआ कि ये बात कोई ना सुने। साफ साफ बात, कभी आज तक आपको लड़ने की दावत नहीं दी, कभी फिरके बाजियों की दावत नहीं दी, कभी इख्तलाफी बातों काम करने की दावत नहीं, हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। हर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क हर जगह होता है, तो क्या हुआ? आप बर्दाश्त तो कीजिए। ये तो कुंद छुरियाँ बन के हम अपने हाथ में लेकर निकलते हैं ना कि इसी पे साथ रहोगे तो ठीक हो, नहीं, ये गलत है। अपनी राय पूरी पक्की है, दिल में पता है कि क्या ठीक तरीका है, हदीस से मुताबिक क्या है, कुरान से मुतल्लिक क्या है, नसीहत भी करते हैं, बताया भी जाता है, लेकिन आप लड़ाइयाँ लगवाने लग जाएँ लोगों में। आज दीन को, इस्लाम को के लिए बदनाम कर दिया, तो अभी इस रुकू को ज़रा सा आपने अपने लिए समझा कि मैं चाहती हूँ कि मैं बेहतरीन बनूँ, मैं तो चाहूँगी, मैं तो अपने लिए पढ़ूँगी, आपका दिल तो सुने, लेकिन मुझे फ़ायदा होगा इससे क्या? वला तक्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और मुफलसी के खौफ से अपनी औलाद को ना मार डालो, इनको और तुमको हम ही रोज़ी देते हैं, यकीनन इनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है, खबरदार जिना के करीब भी ना फटकना, क्योंकि वो बहुत बड़ी बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है, और किसी जान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया, हरगिज ना हक कत्ल ना करना, और जो शख्स मजलूम होने की सूरत में मार डाला जाए, हमने इसके वारिस को ताकत दे रखी है, बस इसे चाहिए कि मार डालने में ज्यादती ना करे, बेशक वो मदद किया गया है, और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ सिवा इस तरीके के जो बहुत ही बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत को पहुँच जाए, और वादे पूरे करो, क्योंकि कौलो इकरार की बात पुरस्त होने वाली है, और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो, और सीधी तराजू से तोला करो, यही बेहतर है और इंजाम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और ये सबसे अहम है, इस आयत 36 को दिल की तख्ती पे लिखेंगे आप, क्या? जिस बात की तुम्हें खबर ही ना हो उसके पीछे मत पड़ो। वला तक्तुमा लैसा, यानी मिन हुस्निल इस्लामी तरकुहु मा ला यानी, इस्लाम का हुसन क्या है कि बंदा हर वो चीज़ छोड़ दे जिससे उसका कोई मतलब नहीं। हम इवनिंग स्पेशल को देख लें और मीम्स को देख लें और न्यूज़ चैनल्स को देख लें, वो लोगों की ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं कि इनसे गलती हो और हम इस पर गाने बनाएं, हम इनकी मीम्स बनाएं, कभी सियासतदानों की छोटी छोटी बातों पर जो लतीफ़े और जोक और जो गंद बला दिखाते हैं उसको सामने रख के इस आयत को सुने तो आपका दिल जलने लगेगा, आपका दिल दुखी होगा। अल्लाह कहते हैं क्यों लोगों की बातें पकड़ते हैं, और मैं अक्सर सोचती हूँ कि दीन सीख रहे ना आप सब इस वक्त, आपको पूरे पारे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 से 17 रुकू पढ़ाए जाते हैं, कमो बेश आगे जाकर और भी फ़र्क होगा पारों में। सारी बातों में से अगर आपको कोई एक बात नहीं अच्छी लगी तो इग्नोर कर दीजिए, आप बोले लीजिए जो आपको अच्छी लगती है। दुआ करें कि अगर वो बात आपको अच्छी नहीं लगी और वो ठीक बात है तो आपको अच्छी लगने लगे, और अगर मैंने आपको ऐसी गलत बता दी तो अल्लाह मेरी इस्लाह का जरिया बना दे। लेकिन ये कह देना कि वो 100 बातों में से एक बात पकड़कर अब हम नहीं सुनते तो ना सुनिए, और बहुत हैं शहर में, आप उनको सुन लीजिए जिससे आपका दिल खुश होता है। ये सारी मस्जिदें एक हो जाएंगी, ये सारे मिलकर एक लफ्ज़ में आ जाएंगे मुस्लिम। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी आंखों कानों का सही इस्तेमाल करो, लोगों के पीछे ना पड़ो, यदि गलतियां ना चुना करो। और मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ अल्फाज ना पकड़ा करें, तंग दिल हैं आप, तंग नज़र हैं आप, भी तो अल्लाह से दुआ करें ना कि अल्लाह आपका दिल खोले। आप बच्चों की छोटी छोटी बातें पकड़। मियाँ साहब बेचारे को बात कह के जाएं किधर, और बेगम रोज इतनी खिदमत करती है, अगर जरा सी कोई बात ना कर सके तो जाए किधर। नहीं, ईजी गोइंग, अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन ईजी गोइंग होता है, आसान मामला होता है उसके साथ। वो बाल की खाल उतारने वाला, कुरेदने वाला, चिड़चिड़ और जिच करने वाला नहीं होता। और ये आपको कम अज़ कम दौरे कुरान से समझ आ रहा है। ईजी गोइंग, नरम दमे गुफ्तगु, गर्म दमे जुस्त जो, रस्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक जो। अपना किरदार में भी तो देखो ना, आप देखिए आप सब माशाल्लाह फैमिलीज को निभा रही हैं, आप भी सास भी होंगी कोई बहू भी हैं, हैं तो कट्ठी ना बैठे, पता नहीं बीच में ना कोई झगड़ा शुरू हो जाए। तो नंद बाबा जो बैठी हैं तो ज़रा से फ़र्क पे बैठा करें। देवरानी जेठानी तो मेरा ले एक सुबह के सेशन में है तो एक शाम क्या है। अब ये मैंने क्यों प्यार बड़े रिश्ते बताए, हम इसको शरीका कहते हैं, हम इसको गुस्से दिलाने वाला कहते हैं, एक आंख ना बहाने वाला रिश्ता कहते हैं। आप सारी मिलके एक क्लास में आ जाएं, 2 महीने बाद आप सबका दिल ही प्यार हो जाएगा। हमारे पास बड़ी गवाहियाँ, पहले भी ताल्लुक अच्छा था लेकिन कुरान क्लास एक हुई सास बहू की तो फिर पता चला कि तुम्हें बेटी बना के रखूँगी, अच्छा मैं भी सास नहीं अम्मा समझूँगी। ये ऐसी डायलॉग है फिल्मों में बोले हुए, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, फिर सास और बहू सहेली, देवरानी जेठानी सहेलियाँ, ये जरा सहेलियाँ हैं ना, गवांडने और सहेलियाँ, ये ताल्लुक बनता है जब आप एक क्लास में होते हैं। ये मैं बड़े प्यार से बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को दिल में रखते हुए। तो कुरान तो आपकी किरदार साजी कर रहा है। क्या आज की आयतों को पढ़कर आपको अपने माँ बाप की कदर नहीं महसूस हो रही? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बेटी सुनेगी तो उसको आपकी नहीं होगी, आपको इस वक्त अपनी बेटी को नहीं सोचना, अपनी माँ को सोचना। यानी जब माँ बाप की बात है ना तो बच्चों को ना खुदा के लिए सोचा करें। हम ऐसे वक्त में गरीबों की शामत ले आते हैं, इस वक्त आप अपने अम्मा बाप को सोचें। और जब आपको माँ बाप की बातें आएँ कि वो कितने अच्छे होते हैं तो अपने बच्चों को सोचें। तो बहरहाल ये मोहब्बतों की बातें हैं सारी। फरमाया कि जिस बात की तुम्हें खबर की ना हो इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान और आँख और दिल इनमें से हर एक से पूछ गिछ की जाने वाली है, यानी यू विल बी क्वेश्चन, तुम्हें हर बात का जवाब देना पड़ेगा। और फिर अगर उसके लिए तैयार हो तो ठीक है, जो भी चाहो कर लो। और ज़मीन में अकड़ कर ना चल, कितना तो ज़मीन को फट सकता है और ना लंबाई में पहाड़ों को पहुंच सकता है। इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नज़दीक सख्त नापसंदीदा। देखिए चाल चलन भी अल्लाह सिखा रहा है, करेक्टर सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाएगा आपको जब आप इस पर अमल करेंगे। और ये सारी बातें बता के फिर कहा, ये भी उन सारी वही की बातों में से हैं जो तेरी जानिब तेरे रब ने हिकमत से उतारी है। तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाना कि मलामत खुर्दा और रांदा दरगाह होकर दोजख में डाल दिया जाए। क्या बेटों के लिए तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छांट लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को लड़कियां बना लिया। नऊज़ुबिल्लाह, बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो। पिछले पारे की बातें याद कर लो कि अल्लाह की बेटियाँ फरिश्ते और हमारी बेटियाँ वो जिनको देख कर दिल गुड़े। नहीं, बेटियाँ तुम्हारे लिए नेमत है। क्या है फेथ इन एक्शन, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल नहीं करना, यतीम के माल में हर किस्म की ज्यादती से बचना है, जिना की तरफ जाने वाले हर रास्ते से बचना है, अपने अहदों को पूरा करना है, हर मामले में बड़ाई और तकब्बुर करने से बचना है। इस सारे के अंदर जो बात हुई है ना उसमें वला तक़रबुज़ ज़िना को हाईलाइट करें। सबसे पहले कुरबातें ज़िना ज़िंदगी में आती हैं, फिर उससे थोड़ा सा डाउटफुल शुबे वाली चीज़ें आती हैं और फिर बंदा हराम में इन्वॉल्व होता है। आपने लड़की लड़के की मंगनी के बाद उनकी एक मुलाकात को लीगलाइज कर दिया एज अ फियांसी, जाओ बेटा एक दूसरे को समझ आओ, अच्छा ये लो $50 ले लो, खाना भी खा लेना। फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्या नहीं नहीं फियांसी है ना, अच्छा फिर क्या होगा, नहीं इनकी समझ बड़ी अच्छी हो जाएगी ना, अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या आपने भी अपने मियाँ साहब के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी? आपके अब्बा और अम्मा की भी इसी तरह से ज़िंदगी निभी, क्योंकि शादी से पहले वो एक दूसरे के साथ खा पी रहे थे? नहीं, नतीजे क्या हुए, शादी होती कोई नहीं, कैसे बच जाते हैं आपके, पहले ही टूट जाते हैं। वो कहते हैं ये नहीं मेरे मतलब के, 4-4 साल की मंगनियाँ टूट गई, क्योंकि शादी के बाद एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जोड़ देता है, लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं फिर एक दूसरे की ज़रूरत होता है। लेकिन मंगनी के बाद लड़की लड़के का मिलना दो तरह से ख़तरे में है, یا تو دین ٹوٹے گا، حد ٹوٹے گی۔ کوئی بات نہیں، شادی تو ہونی ہے، اور بعد میں نہ ہوئی تو وہ ساری پرانی یادیں دونوں کو ذہنی مریض بنا دیں گی۔ لڑکی کہتی میں نے آگے سے شادی نہیں کرنی، اور اگر یہ نہ ہوا نا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے نیگیٹو جان چکے ہوں گے کہ کہیں گے اچھے ہم عقل مند ہیں، ابھی توڑ دیں، بعد میں نہیں نبھنی۔ تو اللہ نے آپ کو مجھے کوئی سزا نہیں دی، اس کی نظر ہے ہر چیز پہ۔ اب آگے قرآن کی کتاب، سورہ بنی اسرائیل کے تعارف میں میں نے یہ بات بولی نہیں ہے، لکھ لیں، کتاب قرآن کا بار بار ذکر ہے۔ تو آیت 41 سے 52، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، رکو نمبر 5، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ان سے تو انہیں نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ ضرور اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے اور بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تصدیق کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے، اور تو جب قرآن پڑھتا ہے تم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں۔ اس سے پہلے کہ برے گھر کی بجلی جائے فیوز کر دو، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے جس کا ادھر تذکرہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ منہ پھیر کے گوگردانی کرتے، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابے داری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا، دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، یعنی لوہے سے بھی کوئی مضبوط دھات۔ پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ آج، کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو۔ کون سی؟ جس نے وہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس دن تمہیں لگے گی کہ بہت ہی تھوڑی تھی۔ ایمان سے متعلق ایک آیت 45 اسرا، حق سے منہ موڑنے والوں کے کان حق سننے سے محروم کر دیے جاتے ہیں، بہانہ کوئی بھی بن جاتا۔ لوگ قرآن سنتے ہیں، تراویاں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو جماتے ہیں۔ آج کل کی مسجدیں رات کے وقت آپ دیکھیں نا تو آپ کو متِ مسلمہ پہ پیار آئے گا، جیسے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں اور گھٹن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ بھی ہر مسجد میں دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتی ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہ۔ اور جب آپ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات کریں تو ایک ادا ہے، ہم تو صبح اٹھ نہیں سکتے، ہمیں تو آتا نہیں، ہم تو جاتے نہیں، گاڑی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، حیرت کی باتیں ہیں۔ میں سوچتی ہوں وہ قرآن جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو سننے کے لیے کتنے شوقین ہیں، اور جو سمجھ آنا ہے اس کے لیے ہمت ہی نہیں۔ نہیں نہیں، یہ روزے سے نہیں آ سکتے تو روزوں سے پہلے کیا تھا؟ روزوں سے کے بغیر نہیں آ سکتے، صبح میں نہیں آ سکتے، جلدی نہیں آ سکتے، اچھا وہ شام تو شام میں نہیں آ سکتے۔ باغ بہشت نکالا تھی کار جہاں در آزم میرا انتظار کر، یعنی نہ ماننے کے 100 بہانے۔ اور یہاں ہمارے لیے خوشی کی بات کیا ہونی چاہیے؟ قلیلوں میں نواد یشکو قلیلوں ماں تذکروں، بلائی اور प्योर चीज़ थोड़ी होती है ना। आप तो बहुत सारे हैं, मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन ओवरऑल 1-2 बिलियन मुसलमानों में से रेशियो निकाल कर देखिए, इस वक्त कुरान को समझ के पढ़ने वाले कितने हैं और सिर्फ सादा पढ़ने वाले कितने हैं। जैसे पहले दिन का चांद छोटा होता है तो मस्जिदें ज़्यादा भरी होती हैं, दूसरे दिन का चांद ज़रा सा बड़ा होता है तो उसमें से 1% कम हो जाते हैं, जिस दिन चांद के 7 दिन आते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी का शौक पूरा हो चुका होता है, और जिस दिन 14वीं का चांद होता है उस दिन आधे ही रह जाते हैं। फिर दोबारा जब आखिरी रातें शुरू होती हैं चांद के साथ तो फिर बढ़ते हैं। चलें भाई, खुश रहें आप जैसे भी रहें। इस सदी में, ये जो सेंचुरी है ना, 21st सेंचुरी, ये कुरान की सदी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त के जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं, यानी जिनकी गोदों में नहीं अब बल्कि उनके कद के बराबर बच्चे हो रहे हैं, वो साथ साथ $800 फीस दे के बच्चों को इस्लामिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और मैं दुआ करती हूँ और देती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में बच्चों को स्कूलों में तर्जुमा और कुरान के दौर कराए जा रहे हैं, आपके मुल्कों में भी मेरी आवाज़ जिस इस्लामिक स्कूल तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दें, इन मासूम जहनों के ऊपर इस कुरान के लफ्ज लिख दें। फिर लोगों को कपड़ों पर और कमीज़ों पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुशनों पर नहीं लिखना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, डिटेल्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आप चलते फिरते कुरान बन जाएंगे। और सूरत बनी इसराइल इसकी बेहतरीन तरबियत करती है। आप इस सूरत को अपने जवान होते हुए बच्चों को ऐसी लाइट वे में 7-8 से 10-12 साल 3 एजर्स से सिर्फ तर्जुमा गो थ्रू करा के देखें और आप महसूस करेंगे कि इसमें कोई चुभने वाली बात नहीं है, बड़ी मॉरल्स हैं। आप नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स उनके बुला लें, ये वो बातें हैं जो बनी इसराइल की शरीयत में भी थी और आज हमारी शरीयत में भी है। अमल के नुक्ते क्या हैं, मौत के बाद दोबारा जी उठने और हिसाब देने पर यकीन रखना है, कुरान को समझ कर पढ़ना है और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है इंशाल्लाह।